તારીખ 30/9/1990 શ્રી પદ્મનંદી પંચવિષ્ટિકા ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 45.
आचार्य कहते हैं कि अपने कर्म के वश से चाहे दुखों की निवृत्ति हो अथवा न हो, तो भी जो दुख की निवृत्ति के लिए व्यापार करते हैं, यद्यपि ये भी संसार में मुख है, तो भी हम उनको अति मुख नहीं मानते। किंतु जो अपने प्रिय स्त्री पिता जी के मरने पर पाप के लिए पाप के लिए अथवा दुखों की उत्पत्ति के लिए शोक करते हैं, उनको निश्चय से हम मूर्ख शिरोमणि अर्थात वज्र मूर्ख मानते हैं। इसलिए विद्वानों को स्त्री पुत्र आदि के मरने पर कदापि शोक नहीं करना चाहिए। अनित चिंता शक्ति का इसलिए जो सहयोग नित्य है, आत्मा नित्य है और सभी प्रकार के सहयोग अनित्य है, उसमें शुरू में ही वे की बात ले लिया बिल्कुल अनित्य है, छुटने वाली चीज है। मृत्यु के लिए न चिंता करना है न शोक करना है। वैसे ही दूसरे जो संयोग है जिस प्रकृति को ये अपूर्ण परिवार है, पहला नंबर देह का आता है जिस प्रकृति अधिक रहती है देह को देहात्म मृत्यु के कारण, फिर आते हैं परिवार का नंबर, इसमें स्त्री पुत्र है तो सबसे मुख्य है। उस आदि में अगर किसी दूसरे सदस्य पर दूसरे सदस्य पर भी नीति हो विशेष रूप से, तो वो भी ले लेना अपने अपने परिणाम को समझ करके। तो पहले दृष्टांत सांसारिक मुख बताता दिया है, स्पष्ट सिद्धांत लिया है ये पारमार्थिक मुख का है। संसार में मुख है कह रहे अपन देखो, ये तो कितनी जबरदस्त मुखता है। आचार्य कहते हैं कि अपने कर्मों के वश से चाहे दुखों की निवृत्ति हो अथवा न हो, तो भी जो दुख की निवृत्ति के लिए व्यापार करते हैं, यदि की भी विषमता कर्माधीन है, निवृत्ति हो गए तो भी कर्माधीन है, निवृत्ति नहीं हो तो भी कर्माधीन। जैसे शरीर का रोग पीड़ा होती है तो उसकी निवृत्ति कर्माधीन है, प्रयत्न करने से निवृत्ति हुई है सो बात नहीं है, फिर भी ऐसा दिखने में आता है कि प्रयत्न किया इसलिए निवृत्ति हुई। कभी ऐसा देखने में आता है कि प्रवृत्ति प्रयत्न की अनिवृत्ति नहीं हुई, रोग चालू है, तो वो कर्म के अधीन होने पर भी जो व्यापार करते हैं, व्यापार में प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वे भी संसार में मूर्ख है, तो भी हम उनको अतिमूर्ख नहीं मानते हैं, तो भी उसको अतिमूर्ख कहने में नहीं आता है। किंतु जो अपने प्रिय स्त्री पुत्र आदि के मरने पर पाप के लिए अथवा दुखों की उत्पत्ति के लिए शोक करते हैं, क्या होता है उसे? पाप होता है, पाप के परिणाम है, शोक के जो परिणाम है वो पाप के परिणाम है, और ये परिणाम से नए कर्म मंजूर होते हैं, वो दुख के ही कारण है, दुख के कारण नहीं होते। जिसके वियोग होने से जो शोक के परिणाम हुए वे पाप के परिणाम है अथवा दुख की उत्पत्ति के लिए परिणाम है, और इसके लिए शोक करते हैं, अथवा वो निमित्त भी पाप के और दुख के ही थे, चेतन भी वो पाप के निमित्त थे, क्योंकि उनके आश्रित को मैं नहीं बता सकता, ये मेरे हैं, उनके आश्रित ऐसे भाव में अन्य नहीं होता था, पाप ही होता था और दुख ही होता था, कोई सुख नहीं होता था, उनके लिए शोक करते हैं, उनको निश्चय से हम मुख शिरोमणि अर्थात वज्र मूर्ख मानते हैं, मुख शिरोमणि ऐसा सब मूल में
स्त्री पुत्र मित्र पिता पाप से ही
पाप से महापुण्य कैसे हो सकता है? ये मेरा परिवार है, मेरा पुत्र है, उसमें कहा आया तो है क्या, वहां कोई पुण्य है क्या? हम तो कहते हैं विचार कर रहे पुण्य हो तो कैसे होता है, वहां तो पाप भी एकांत पाप भी
ऐसा माटे बजरूमर छे के उधर पाप में निमित्त थे गयो हमारे तो बहुत सरल थे छता स्ना करके मानस
शोक करे पर उसमें भी वो नहीं समझता कि मैं शोक करता हूँ इसमें नया पाप बांधता, शोक करने में काल में मैं नया पाप बांधन करता हूँ, नया दुख की उत्पत्ति कर लेता हूँ, वर्तमान तो दुख है ही, शोक वर्तमान तो दुख ही है, और नया भी दुख का ही कारण है, जो
परमात्मा की कृपा करनी चाहिए।
स्वरूप में अपनत्व करना है, अपने स्वरूप को छोड़कर कहीं भी अपनत्व नहीं करना है, इस हिसाब से सिद्धांत को या भगवान की आज्ञा अपने स्वरूप में अहंकार करे, आत्मस्वरूप में ही अहंकार करे, आत्मस्वरूप को छोड़कर कहीं भी अन्यत्र अहंपरा नहीं करना चाहिए। कारण भी यही है कि अपना अस्तित्व अपने स्वरूप में है, अपना अस्तित्व अपने स्वरूप से बाहर कहीं भी है ही नहीं, न देहादिक में है न परिवार में है, इसीलिए पता है स्वरूप में नहीं है। ये जो अहंपरा स्वरूप को छोड़कर होता है उसमें सबसे बड़ा पाप तो मिथ्या होता है, फिर जो कषाय की तीव्रता का पाप होता है ये दूसरा है, पहला पाप तो यही होता है,
इसके साथ कषाय की भी तीव्रता होती
है। हाँ, परिणाम तो वैसा ही नहीं है, और पाप के ऐसे दो भूमिके थे, तो कषाय की मंदता को पुण्य कहते हैं, कषाय की तीव्रता को पाप कहते हैं, तो उसमें कषाय की तीव्रता ही है।
भगवान ने राम को बोला है कि राम मैं दशरथ का कुमार हूँ, कौशल्या का पुत्र हूँ, मैं तो राम हूँ, ऐसा तो मैं एक वक्त आत्मचा करके बोलो कन्या आत्मा
ऐसा नहीं बोलो मैं इसका पुत्र हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ।
ऐसे अपने ऐसा करो तो अपने ऐसा करो।
આપણે માન્ય ઘરવાળાને ખબર પડે તો
વેસે માથે તો માનતા નહીં, ઘરવાળા ક્યાં કરતા, માતા નહીં માનતા તો ક્યાં કરતા, દુસરા ક્યાં કરતા હે। આત્મનિષ્ઠા કર દેતા હે, આત્મા કા હિત કોઈ કરતા હે, એક પરિવાર કે સદસ્ય હિત મેં નિમિત્ત પડતા હૈ, માણસ કો હિત મેં નિમિત્ત પડતા હૈ, ગુણવાન ઘરવાલા વસ્તુ સાધન ક્યા હો
સાધન
સાધન ફર ઘરવાલા પરિવાર વાળા નહીં સંબંધ સાધન હોય। ये सब बातें जो शास्त्र में आचार्य ने कही है, ये बातें तो घर के परिवार के पर द्वेष करने के लिए तो नहीं की, द्वेष कराने के लिए कुछ बात कोई बात नहीं, लेकिन जो राग है और राग से अंधत्व प्राप्त है उसको मिटाने की दवाई है, उसको मिटाने का ये उद्देश्य है आचार्य का। द्वेष कराने के लिए कोई बात नहीं, अपने पर द्वेष करने का, पुत्र पर द्वेष कर लेना, अगर किसी दूसरे पर द्वेष कर लेना, ये कोई बात नहीं। संसार के प्राणी है, संसार की नजर से देखे तो, अब पारमार्थिक नजर से देखे तो ये प्रभु परमात्मा है, सब में परमात्मा विराजमान है, इससे कम कोई नहीं है। ऐसा हमको उसी दृष्टि से देखना है, जो है ऐसी दृष्टि से देखना है, सर्वात्मा मानसम दृष्टि है, कहां जो पाप कहां होता है, ये मेरे हैं उसमें पाप, और उनके आश्रित परिणाम करते हैं, इसलिए उसको पाप के निमित्त कहें, लेकिन वो निमित्त ऐसा नहीं कहते कहते तो जबरन नहीं अपने सब करवाते ऐसे पाप, तुम हमारे में करो हिम्मत पर करो, ऐसा वो तो नहीं कहते, खुद करता है, खुद का परिणाम को ठीक रखना तो खुद को देखने की बात है, पर स्वयं के अपने अधीन है, उनके अधीन नहीं, उनके निमित्त से होता है, इसलिए बात कभी निमित्त प्रधान का आती है, लेकिन करते तो खुद ही करते हैं, करवाते थोड़े, इसलिए अपराध तो अपना स्वयं का है, अपराध के इन्हीं को नहीं, दूसरों का तो अपराध नहीं, परिवार का तो कोई अपराध नहीं है, जो परिणाम अपने में पाप का होता है उनके निमित्त से बता, लेकिन उनको अपना अपराध तो अपने स्वयं ने किया है, उन लोगों ने नहीं करवाया, उन्होंने किया भी है।
સારી વાત કરી, સાધન ની થઈ જાય તો પછી હું તો પાપના નિમિત્ત ક્યાં રહ્યો,
પાપના નિમિત્ત નહીં રહ્યા,
તો એ તો અગર ડાયો પુરુષ હોય તો આ પ્રયાસ કરવો જોઈએ, મારી પત્ની સાધન ની બને,
સહી કરે ઉસકે ધર્મ ભાવના મેં ફિર વો સબ પ્રકાર કે અનુકૂળતા હો જાયેગી।
કૃપા દેવ ને પત્ર લિખા ને પરિચય કરકે ઉસમે યે મર્મ હૈ,
तुम और वो जो दूसरे पर्याय में है ऐसा करके, दूसरी पर्याय नहीं लिखा, दूसरी पर्याय में है ऐसा करके लिखा है, उनके लिए तुम ऐसा ही समझो कोई साधन नहीं है, ऐसा
कर
अपना परिवार का सदस्य है, इनके लिए सब प्रकार के सुख सुविधा करना, ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है उनका पालन पोषण करना, उनकी अनुकूलताएँ देखना, उसकी अनुकूलता में मेरे को रहना ही हमारा फर्ज है, ये सब काम कर सकता हूँ। तो इसमें मेरा पड़ा कर लिया, तो मेरा पड़ा मानकर ऐसा किया, ये पाप कर सकता है।
બીજે ઠીકાણે તત્વ પ્રચારને ઉપદેશ દેવા માટે જાય ત્યારે તત્વ પ્રચાર થવો જોઈએ, ન તમે પોતે ભેટ આપું છું, તમે એમ કરો, તમે ભાવના ધરાવો કે પોતાના ઘરમાં સાથે પત્ની સાથે અમે નહીં કરી શકે તો આજે શું કરશે પ્રજા, ન પણ થાય
તો પ્રયાસ કરે, અગલા જેવી યોગ્યતા નહીં હોય તો કોઈ ઉપાય નહીં,
લેકિન
પ્રયાસ
કરે
ભાવના રખે છે, ये भी ऐसे आत्मकल्याण के मार्ग में आ रहे हैं, इनका हो जाएगा। इसलिए जो भी सही बात है उनको बताओ, मानना नहीं मानना भी एक भी स्वतंत्र है, किसी को जबरन बात तो हो ही नहीं सकती, पत्नी है इसलिए उनको मानना ही चाहिए, क्यों नहीं मानते ये बात भी संभव नहीं है। आखिर में तो एक जीव है स्वतंत्र,
बस प्रयास करना चाहिए,
जब दूसरों के लिए करता है तब उनके लिए भी मार्ग तो आत्मकल्याण का है, बहुत सुंदर है, वर्तमान में भी दुख नहीं होगा और भविष्य में दुख नहीं होगा, ऐसा सुख का सुंदर मार्ग है ये, तो इसमें क्या आपत्ति है, क्योंकि योग्यता तो अपनी अपनी होती है, ऐसा नहीं होता क्या हम धर्म धर्मों में लाइन में जावे तो दूसरा आ ही जावे, ऐसा संभव नहीं, और ये कोई जबरन जबरदस्ती का विषय नहीं है। तो प्रेम से जो होता है वो होता है, बलात्कार से कोई
चीज़
करने का अपना सिद्धांत ही नहीं है, अपने जानकर जो शोक होता है उसके योग में अपनत्व के कारण जो शोक होता है, जिसकी मौजूदगी में हमने मिठास या प्रीति या लालप जिसको कहते हैं
जमीन,
इस प्रकार के परिणाम करने से इसकी गैर मौजूदगी में दुख हुए बिना ये बड़ी मूर्खता है। प्रीति करना करने की मूर्खता पहले कर ली है और अब शोक करने की मूर्खता दोबारा हो रही है, तो दोनों मूर्खता है ऐसे। लौकिक व्यवहार दूसरी चीज होती है और अपना हित अहित को समझना और उस ऐसे समझ करके अपना अहित नहीं करना, ये पारमार्थिक चीज है, इसके साथ आत्मकल्याण का संबंध है, अकल्याण का संबंध है। लोक व्यवहार लोक रुचि की दूसरी चीज होती है, तो एक फॉर्मेलिटी है, लोक व्यवहार तो एक फॉर्मेलिटी होती है, वास्तव में हमारे परिणाम हमारी मान्यता हमारी समझ कैसी है, जिससे आत्मकल्याण और अकल्याण का संबंध सीधा समझ में आ जाए, इसका विचार करना है। विषय को कभी धर्मों ने दिया है कि किसी को मरने के पीछे शोक नहीं करना, ये दुर्गति का कारण है, वहां तो ऐसे लेते हैं जो धर्मों में जो शास्त्र है उसमें पैसा, जो मर जाता है इसके पीछे जो शोक करता है वो मरने वाले को दुख पहुंचाता है, जो वहां गया है वहां ही उसको दुखी करता है, ऐसा करते लेते हैं। युक्ति है,
हाँ जी हाँ
जी, वस्तु स्थिति नहीं है, युक्ति है। उस पर प्रीति थी, तुम अभी भी उसको क्यों दुख पहुंचाता है? तो चला गया, अभी वहां उसको दुखी करता है, तो ना गया वहां उसको तो दुखी करता है, ऐसा युक्ति करके उसको शोक को छुड़ा देता है।
युक्ति
जो पाप के परिणाम है, तो शोक पाप के परिणाम छुड़ाने के लिए, दुख के परिणाम छुड़ाने के लिए, वहां तो खुद को भी दुख होता है, सुख में शोक में, तो दुख मिटाने के लिए युक्ति प्रयुक्ति भी करते हैं। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, वस्तु का स्वरूप अनुसार जो ज्ञान है उसमें तो वो बात है, ये चीज मेरी नहीं थी। परिवार के किसी भी सदस्य ने ममत्व किया है वही मेरी मुख्यता थी, तो एक मुख्यता तो कर ली, अभी दूसरी मुख्यता करता हूँ, इसलिए मूर्ख शिरोमणि कहते हैं उसको, वज्र मूर्ख करा। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को ज्ञान में ये बात नहीं थी कि ये मेरा भाई नहीं है, तो दोनों के जीवंत अवस्था में भी बहुत प्रेम था, बहुत अनुराग होता है, जो नारायण खुद होते हैं, बलदेव और वासुदेव होते हैं, बहुत प्रेम दोनों भाई में होते हैं, एक मुक्तिगामी है एक नरक गामी होते हैं, दोनों के परिणाम इतने गड़बड़ वाले होते हैं,
तो दोनों जानते
हैं पूर्व कर्म के अनुसार, चारित्र में उनके राग होते हैं, दर्शन में उनके चारित्र में दर्शन होते हैं, तो ज्ञानियों को संसारी की नजर से नहीं देखना, ज्ञानियों को कभी वो संसारी है ऐसी नजर से नहीं देखना, ऐसी नजर से देखना यही अनंतानंद है। ज्ञान को ज्ञान की नजर से यही बात तो सीखनी है, ये सदग्रंथों से अगर हमें कोई सीखना है तो वो बात सीखनी है, क्योंकि ऐसे महापुरुष ऐसे सत्पुरुष संसारी गृहस्थी के बाह्य भेष में है, किंतु अंतरंग में वैसे नहीं है, पूरे के पूरे बदल चुके हैं, और पूर्व कर्म वशात वो संसार के बीच में देखने में आ गए, तो उनकी तो भीतर के परिवर्तन पूरा का पूरा हो गया, तो उस दृष्टि से उसे देखना है, वरना बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा। उनको संसारी के रूप में दिखने से बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, इतना अपराध ऐसा अपराध करने लायक नहीं करना है। ये बात कथानुयोग में आई, तो उनका चारित्र मौका कषाय दिखाने के लिए नहीं आई, वहां वो हेतु नहीं है कि उनका राम दिखाने का अभिप्राय है, अभिप्राय तो वहां वो है कि इतना चारित्र मौका राग का बड़ा जंजाल आदमी भी उनकी दृष्टि आत्मदृष्टि नहीं छुपी, आत्मज्ञान
नहीं
छुपता, ये दिखाने के लिए वो बात आई है। जैसे हम कहेंगे कि मुनियों को बड़ा बड़ा अक्षर परिश्रम होते हुए भी वो अड़ोल आसन में स्थिर रह जाता है, आपस को स्थिरता उनको स्थिरता से वो च्युत नहीं होते, तो इधर स्थिरता से च्युत हुए हैं लेकिन सर्वथा च्युत नहीं हुए हैं,
और श्रद्धा ज्ञान में से तो चित्त हुए ही नहीं है। उसी काल की दृष्टि तो ऐसी ही ऐसी की ऐसी ही रहती है और वेदन भी ऐसा का ऐसा ही रहता है।
अनंत में चारित्र कांश व्यवस्था का
सर
है। अनंत में चारित्र कांश व्यवस्था का सर
है। अनंत गुणों का अंश है। सर्व गुणांश को समझ कोई गुण की बात तो नहीं है। तो श्रद्धा ज्ञान प्रधानता है और भी सब गुणों का अंश है यथा संभव उसको देखना है कि ये पर उपसर्ग आया है इनके पर रामचंद्र जी पर ये उपसर्ग आया है।
उपसर्ग आया
उपसर्ग आया और भीतर का उपसर्ग आया है कम हो देगा
जी सर।
तो बाहर में जो बहुत अनुराग का विषय भी अपना भैया था वो चला गया लेकिन अंदर में वो हिलते नहीं है। ये एक आश्चर्यकारी घटना है कि अंदर में बिल्कुल श्रद्धा ज्ञान में से हटे में हिले भी नहीं है। ये इनका जो पराक्रम है उसको देखने की नजर हमारी होनी चाहिए। इस नजर से हम देखें तो इनके चरण में हमको मंदन करने का भाव आए बिना रहेगा। अगर सत्पुरुष की अंतरंग परिणति का दर्शन हुआ तो जो परिणति अपने परमात्मा के साथ अभेद हो गई है और किसी हालत में वो वहां से छूटती नहीं है। इतना चारित्र का मोह और राग तीव्र होने पर भी ये परिणति नहीं छूटती है उसमें कितनी ताकत है अपने परमात्मा को पकड़ने की। अगर ये समझ में आ गए तो इसके प्रति भक्ति बहुमान हुए बिना रहेगा। इसलिए सत्पुरुष को इसकी अंतरंग परिणति से पहचाना जाता है। बहन परिणति से कभी पहचाना नहीं जाता। माया ना चित्र और पत्र सत्पुरुष को पहचान करने में उसके जो परिणाम है उसमें एक तो मूल है और एक उत्तर है। ऐसा करते हैं एक तो सत्पुरुष की मूल दशा परिणति को दशा कहता है और एक सत्पुरुष की उत्तर दशा भैया जो दूसरे दूसरे पदार्थ के साथ उसकी चेष्टा देखने में आती है और इनकी चेष्टा देखने के लिए उस अपने की योग्यता हमें तो देख सकते हैं वरना नहीं देख सकते।
घूम करके बेजिक वही अपनी पात्रता की बात आ
जाती है। नहीं ऐसी हकीकत है एक हार्ड फैक्ट है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते। तो ऐसे परिस्थिति में सत्पुरुष के प्रति अधिक क्यों कथा में योग में ये प्रश्न आया कि अगर ऐसी परिस्थिति में भीड़ के बीच में जैसा कोई बहुत ट्रैफिक है इसमें चलाने वाले को और प्रसन्नता चाहिए कि इतने ट्रैफिक में भी वो किसी से एक्सीडेंट नहीं करता है। जैसे भीड़ के बीच में अगर वो अपना श्रद्धा ज्ञान से विचलित नहीं होते हैं उस वक्त जो है वो उनका जो स्वरूप है तो अधिक नजर में आता है देखने में आता है और बहुत बहुमान होता है। यहाँ से पैसा
रामचंद्र जी के जीवन का एक प्रसंग है लक्ष्मण जी वाला दूसरा प्रसंग सीता के
सीता जी के त्याग का
जो वो ले गया रावण उस समय से आगे कितने लाखों आदमियों को पंचेंद्रियों को मतलब मार दिया रावण की सेना को। तो वहाँ स्त्री का अनुराग अगर दृष्टिकोण तो पेड़ पौधों से उन्होंने पूछा है कि मेरी सीता कहाँ गई सीता को देखा है क्या पत्नी का प्रेम और प्रसिद्ध
तो रामायण में तो इतना वर्णन आता है अपने दैन रामायण पद्म पुराण में ऐसा कोई पागल आदमी पूछे पौधों से पूछे पक्षी से पूछे पेड़ से पूछे कि मेरी सीता कहीं देखी कौन ऐसा ऐसा लिया है फिर भी वो अपने आत्मज्ञान से और आत्मदृष्टि से विचलित नहीं हुए हैं। कभी बात किया था ना मैंने नाम ऐसा समाज आता है प्रमुख नाम यही कारण है कि उनको विश्वास है कि मेरे प्रति इनका जो अनुराग है वो अच्छी तरह इसको अविश्वास नहीं हुआ है शंका नहीं पड़ी है। अब देखिए कि लक्ष्मण जी के देह को देखकर शंका होती है लोगों को तो राम तो वो तो अपना तो उदय नहीं है ना तो सीता जी को तो अपना उदय दोनों बहुत फर्क है। आप इनसे झगड़ा करो और मैं देखूं दूसरी बात है आप मेरे से झगड़ा करो ये दूसरी बात है। मैं इनके पर क्रोध करूं आप देख लो दूसरी बात है मैं आपके पर क्रोध करूं आप देखो तो दूसरी बात है। चित्त है वो अपने स्थान पर नहीं रहता
सही बात।
तो सीता जी ज्ञानी थे और रामचंद्र जी भी समय दृष्टि ज्ञानी थे उदय अपने पर था दूसरे का त्याग नहीं किया था खुद का त्याग किया था क्योंकि उनके हृदय में शंका नहीं हुई है कि उनको द्वेष हुआ है या वो साधर्म मिल गए हैं तो दोनों साधर्म भी थे लोगों की दृष्टि से पति पत्नी होते हुए भी दोनों साधर्म थे अच्छी तरह जानते थे एक दूसरे के धर्मों को अंतरंग परिणति को बहुत अच्छी तरह जानते थे।
लोक मुख्यता में साधर्म का त्याग लोक मुख्यता
में साधर्म का त्याग ऐसा अन्य धर्मात्मा कभी करे क्या साधर्म तो वात्सल्य होता है। तो सीता जी ने ये देखा है कि उनका वात्सल्य नहीं गया है क्या देखा
वात्सल्य
उनका पत्नी प्रेम को एक शायरी में रख लो लेकिन मेरे प्रति जो इनका साधारण वात्सल्य है वो भी अभी है इनके हृदय में नहीं गया है मुझे विश्वास है। ये बात रामायण में वहां आती है पद्म पुराण में तो उनको विश्वास है 100% विश्वास है रामचंद्र जी का साधारण का वात्सल्य प्रेम कभी जाहिर नहीं सकता प्रेम मिल ही नहीं सकता तो अवसाद उसका वात्सल्य का जो अंग है वो अंग छुटा नहीं है।
कथा का टोटल तो वहाँ है कथा का टोटल तो वहाँ है हम लोग बीच में टोटल मार लेते
हैं दृष्टि का सवाल देखने का सवाल तो अपने पर ये उदय हुआ है फिर भी ये विश्वास है इनका साधन भी वात्सल्य जो है उतना का उतना है भले उन्होंने राज के लोभ के मुख्यता में ऐसा परिणाम नहीं किए ऐसा एक्शन हुआ है सिर्फ भाव नहीं हुए भाव को अधिकृत कर लिया है पीछे उन हाथ नहीं जानते बहुत समाधान बनता
किस चश्मे से देखते हैं वो किस चश्मे से देखते हैं इस बात को
ये चश्मा लगाना है। सीता जी ने जो चश्मा लगाकर देखा रामचंद्र ने कि ये साधर्मी है उतने के उतना वात्सल्य उसके हृदय में भरा है उसमें कुछ कमी भी ही नहीं है वो जिस चश्मा से सीता जी ने देखा वो चश्मा से नहीं है। जब रामचंद्र जी का दर्शन होगा सही रूप में वरना तो हम ये कहेंगे कि देखो धर्मात्मा हो गए कि न्याय नीति कहाँ रही निर्दोष थी निर्दोष का त्याग कर दिया उसमें न्याय नीति कहां की ऐसा ही नहीं
जिस पे हुआ है वो ऐसा मानता नहीं और हम पढ़ने वाले ऐसा मानते हैं
मानते
हैं गजब की बोल
जिसको ये दुख भोगना पड़ा प्रतिकूलताएं भोगनी पड़ी ऐसे राजनगर में रहने वाले थे उनका तो पिताजी का वर्णन भी सब आता है इसकी शरीर की सुंदरता का देह की सुंदरता का प्रेम का वर्णन आता है कि ऐसी सुंदर स्त्री को कोई जंगल में छोड़ सकता है क्या जंगल में तो जंगली मनुष्य रहते हैं जंगली प्राणी तो खा जा रहे
किया,
सर्प हो, अजगर हो, बाघ, मनुष्य हो तो क्या हो, इतना साहसिक है, बहुत बड़ा साहस है। इतना विकल्प जरूर आया कि ये पर्याय ऐसे होने से अगर किसी निराश के या किसी आर्याओं के आश्रम में अगर मुझे रख दी तो ये जोखिम नहीं होता, इतना विकल्प आया।
फिर भी उसको गौर करो,
फिर
भी
उसको गौर
रख दिया,
फिर भी उसका गौर कर लिया, नमूनारे कुछ ऐसे ही हो ऐसा छोड़ दिया, बिल्कुल भयानक जंगल में अकेले छोड़ दिया, और ये जो साथ ही गया वो देख नहीं सका। साथ ने क्या किया, रामचंद्र जी को पास तो आने का था, उनका संदेशा भी देने का था, कहाँ छोड़ी, कैसे छोड़ी, क्या बात हुआ, कैसे हुआ सब बताया। उन्होंने कहा ऐसा संसार है, धर्मात्माओं को भी ऐसा होता है, उनको बहुत बताया गया, उसके वक्त तो संसार को छोड़ करना नहीं बताया। तो ये इतना वैराग्य उनको कोई लायक जीव था, वो देख नहीं सका, उसको लगे ये संसार ही ऐसा है, ये तो संसारिक घटना है ना, संसार ही रहता है, छोड़ो उसको।
ये भी समय दृष्टि है, तीनों समय दृष्टि है।
ये सब विचित्रता जब देखी संसार की तो उनको वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया मतलब इसके जो परिणाम थे वो अपने संसार में नहीं लगे, दूसरे धर्मात्मा की मूल परिणति को जानता है, उत्तर परिणति का तूफान देखा, उनको अपना संसार लग गया।
पढ़ने वाले को ये टोटल मानना चाहिए, पढ़ने वाले को सारथी का टोटल मानना चाहिए।
हाँ ये बात है कि अगर उत्तर परिणति का ज्ञान हो गए तो वे इस प्रकार से हो गए, धर्मात्माओं को राग द्वेष होता है ऐसे नहीं हो गए, इस प्रकार से हो गए, और मूल परिणति का ज्ञान भी सही रूप में हो गए, तो अपराध तो दृष्टि वैसे जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि, जिसको नाप ही दूसरा नहीं है वो क्या करेगा, इसलिए पहले दृष्टि साफ करने की बात है। तो तुम चाहे कथा अनुयोग पढ़ो तो चाहे कुछ भी अनुयोग पढ़ो, दृष्टि तो साफ नहीं होती, दृष्टि साफ नहीं है तो बहुत आपत्ति है, शास्त्र पढ़ना ही जोखिम है, द्रव्य अनुयोग पढ़ो तो भी इतना जोखिम है, कथा अनुयोग पढ़ो तो भी उतना जोखिम है। दृष्टि सुधारने के लिए सत्संग है, इसको साफ करने के लिए तो सत्संग है।
रामचंद्र जी तो क्षय समय दृष्टि होता
है, चरम शरीर
निर्णय,
एक समय दृष्टि तो कभी दो तीन भाव वाले होते हैं, लेकिन ये चरम शरीर थे, उसी भाव में मुक्ति गामी थे, और इनकी जो लौकिक विचक्षणता थी वो इतनी जबरदस्त थे और इनकी प्रसिद्धि भी इतनी थी कि आज भी अन्य मत वाले उनको प्रभु मानते हैं, वो भी उनको पुरुषोत्तम पुरुष के नाम से पुकारते हैं, राम कृष्ण पुरुषोत्तम पुरुष श्री रामचंद्र ऐसा कहते हैं।
कृष्णा पुण्य श्लोक पुरुष होता है, उसको पुण्य श्लोक पुरुष बोलता है,
पुण्य श्लोक कहते हैं कि अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी उपाधियां लगती है, लेकिन अपने वो पद्म पुराण में जो बात आती है नई गांव में वो ऐसे आते हैं कि संसार की बौतर कला उसको हस्तगत की है। वशिष्ठ के आश्रम में जब कुमार अवस्था में जब विद्या सीखने को गए थे तो सभी विद्या उसने पकड़ ली थी, कोई ऐसी विद्या संसार में नहीं थी कि उसको न आती हो, उसको मट्टी और चाकड़ा दो तो आपको कुम्हार के किसी भी कैसे भी बर्तन में बना देंगे, पेंटिंग करने को बिठा रहे तो कर ले, लड़ाई के सब अस्त्र शस्त्र सभी तो विद्या जाने, लेकिन संसार की सभी विद्या जाने, नृत्य कराने को बैठाओ तो ऐसा नृत्य करेगी किसको नहीं आता, कोई कला बाकी नहीं, तो भी इतना लेखन भी इतना कि एक कला भी बाकी नहीं। मात्र कला मैंने सब सब कला इतने जबरदस्त निरीक्षण थे बचपन से निरीक्षण थे। देखते थे दृष्टांत आता है बचपन में जो जब साल दो साल के थे तब से ही उतने जब उनका जो लक्षण है प्रतीत होते थे। एक दिन रात को वो चंद्र को देखा तो वो रड़ने लगे क्या मुझे वो चाहिए मुझे चंद्र ला दो उससे खेलना है बहुत सुंदर है आकाश का गोला है वो बॉल जैसा बॉल से खेलता है ना बच्चे वो मांग लिए थे वहां से पता चल गया सब मंत्री था सब राजा का बहुत बेमान था ला दू ये चाहिए ना अभी लाता हूँ नीचे उतार दू बाहर नीचे उतारो उसको मैं तो चाहता हूँ कि उसको नीचे उतारो मुझे खेलना है पानी के बर्तन में उसको उसका प्रतिबिंब दिखा दिया पकड़ो उसको वो नीचे आ गया था यहाँ से नीचे आया वो उसकी जो डिमांड थी उस पर से अनुमान किया जबरदस्त बचपन से उनकी जो डिमांड थी वो मामूली नहीं थी सांकेतिक उनका चिन्ह लक्षण था। इसलिए सत्पुरुषों ने यह कहा कि शास्त्र है वो सत्पुरुष के चरण में बैठकर अध्ययन करना उनकी आज्ञा से अध्ययन करना अकेले अकेले अपनी बुद्धि से अपनी दृष्टि से अध्ययन नहीं किया जा सकता है। मति की निर्मलता नहीं हो दूसरी बात है मति की निर्मलता नहीं है वहां तक तो शास्त्र की आज्ञा ही नहीं है।
मति की निर्मलता भी सबको सर्टिफाइड करवा लेना
सहज बात है जिसका दर्शन मंद होता है उसकी मति निर्मल होती है तो उनको नुकसान नहीं होता है कोई बात समझ में नहीं आती है ऐसा कोई गुण रहस्य भूत विषय होता है शास्त्र में जहाँ उनकी मति काम नहीं करती है उस वक्त वो कल्पना में मिल जाते हैं वो ऐसे समझते हैं कि इस जगह मेरी मति वो बात नहीं आती तो मुझे इसकी गहराई में जाने के लिए कुछ अधिक योग्यता प्राप्त करनी होगी मेरी पात्रता और मेरी योग्यता के लिए कुछ और प्रयास करो और इसकी गहराई में जाने का कुछ बाद में प्रयास करो तो अवश्य भीतर में से उसका उकेल मिल जाएगा। उकेल तो अंदर से आता है जो आता है मिल जाता है लेकिन निर्मलता आने से नहीं आने से तो ही नहीं सकते।
महापुरुषों की बात है महापुरुष जाने भी घर में रावण सीता जी के कारण से सब कुछ हुआ और सीता ही इनकी गण धर्म नहीं रावण
की तो परिणाम के बीच ही चलता है परिणाम की विचित्रता देखो रे ज्ञानी ज्ञानी भी ज्ञानी को ऐसा कहता है परिणाम की विचित्रता देखो रे ज्ञानी पर इस पर भरोसा मत करो ज्ञानी ये भरोसा करने की चीज इसलिए उसका आश्रय छुड़ाया है उसकी दृष्टि छुड़ाई है
पिताजी ने रावण ने संबोधन विकल्प है नर कर
सिलसिला कुछ पिछले तीन चार दिनों से चालू है पिछले तीन पद्म पुराण में आते हैं पिछले तीन चार दिनों से दोनों का नए नए भाव में किस किस प्रकार से राम चलता है द्वेष चलता है यहाँ तक तो द्वेष चला है सीता के भाव तक द्वेष चला है बाद में राग में चलता है नरक नरक में जाते हैं और ये तीर्थंकर का जिसको संबोधन करते हैं वो तीर्थंकर का खुद इनका धन भरा है वो गुरु होता है वो शिष्य रहता है क्या विचित्रता है संसार में
आश्रम में दर्शन करना सुनना इन्हीं के उपदेश से होता है। निमित्त पड़ेगी सीता
ज्ञान
वापस
अब सारा संसार रावण की प्रतिक्रमा से देखते हैं। नयन रामायण ये बोलती है कि एक तीर्थंकर का चिन्ह है और जिस सीता को हरण कर ले गया जिसके पर जिसने कुछ दृष्टि भी की अच्छी नहीं थी और जिसके लिए सारे रामायण हुई युद्ध हुआ रामायण है अपने यहाँ युद्ध होता है तो रामायण क्या कहते हैं झगड़ा होता है ये रामायण हुई जिसके लिए रामायण हुई वो सीता खुद ही इनके परिक्रमा करती है। सीता का जीव है फिर तो उसके पर्याय में नहीं रहा तो देव पर्याय में पुरुष होता है वहाँ चंद्र दर्शन के बाद तो उसके पर्याय मिलते ही नहीं बनता है देव खुद संबोधन करना पड़ता है पहली नाटी में
लेके नहीं गए इसलिए तीसरे में गए तीसरे में अनुसंधान हो गया सीता जी के उपदेश से
तीसरे तक जाते हैं ना
तीसरे
मर्यादा
तीसरे तक
तीसरे नाटी तक आगे
तो ताजा बनाओ कैसा है ये सीता जी के संबोधन से इनको वापस समझ में
और संसार पे भी मैंने पर्याय की सीमा कितनी है पर्याय बहुत सीमित चीज है। सीमित चीज को असीम रूप से देखना ही ये दृष्टि की यहाँ तो यही चला है कि तो अपने स्त्री पुत्र परिवार को सही रूप में निसीम रूप से ही अपना नाम लेते हैं ये तो सीमित रूप से संभव हुआ
से प्रश्न किया युधिष्ठिर रावण रामचंद्र जी का कि वो भी दोनों धर्मात्मा थे उनको पत्नी के लिए लड़ने का भाव है उसको द्रौपदी को बचाने का भाव नहीं है
युधिष्ठिर धर्मात्मा थे रामचंद्र जी भी धर्मात्मा थे एक को पत्नी के लिए लड़ने का भाव आया उनको बचाने का क्या करने का भाव है बचाने का भाव है परिणाम जैसा उदय होता है वैसा हो जाता है इसका कोई मूल्य नहीं है शुभ शुभ परिणाम होगा कोई मूल्य नहीं है ये उत्तर दशा है मूल दशा थोड़ी है यहाँ और भी आचार्य महाराज शिक्षा देते हैं वहां भी कहता है कि किम जानासी न किम श्रोषी न किम प्रत्यक्षम देव वेक्षसे निशेषम जगत इंद्रजाल सदृशम ब्रह्मैव सारोजितम किं शोकम कुरुक्षेत्र मानस पशु लोकांतरस्थे निधि किंचित गुरुवेन नित्य परमानंद शाश्वतम दक्षति। अर्थ है कि हे मूढ़ मनुष्य यह समस्त जगत इंद्रजाल के समान अनित्य है वास्तव में तो ये जगत है और स्वप्न समान है ज्ञानियों के ज्ञान में ज्ञानियों की निगाह में ये सारा जगत स्वप्न समान ही है। सकल जगत छे ऐसवत अथवा स्वप्न समान बहुत सुंदर बात किया है ये मानता है कि स्वप्न ही है जैसे जागृत दशा में स्वप्न कुछ नहीं है वैसे आत्मा की जागृत दशा में ये संबंध आदि कुछ नहीं है संसार का स्वप्नपति है जितने भी संसार के संबंध है ये स्वप्नपति है आत्म जागृति में तो ऐसा ही भाषित होता है इससे ज्यादा कोई मूल्य नहीं है। कोई शत्रुता का भाव रखता है तो ये स्वप्न की बात है अगर कोई मित्रता का रखता है अनुकूल होने का ये भी एक स्वप्न है। तेरे आत्मस्वरूप को देख तो न कोई इसका शत्रु हो सकता है न कोई इसका मित्र भी हो सकता है, बन ही नहीं सकता। इसलिए इस पर ज्यादा भजन ज्ञान कर सकता है। हे गुण मनुष्य, ये समस्त जगत इंद्रजाल के समान अनित्य है तथा केला के स्तंभ के समान निसार है। स्तंभ होता है, दिखता है बड़ा, लेकिन उसमें कुछ नहीं है। दूसरा तो थड़ हो, उसकी तो लकड़ी भी होती है, ये तो फेंकना नहीं पड़ता है। आप लोगों को तो मालूम है केला का जो स्तंभ है उसको क्या करें, फेंकना पड़ता है। केला के स्तंभ के समान निसार है, इस बात को क्या तू नहीं जानता है अथवा सुनता नहीं है क्या? तेरे जानने में ये बात नहीं आई कि सारा जगत है वो इंद्रजाल जैसा है? क्या तुझे ये नहीं जाना, नहीं सुना और प्रत्यक्ष देखता भी नहीं है क्या? जैसे कहते बोलिए हमारा पिता रहता है क्या? रहता ही नहीं है, ऐसा सपना नहीं रहता है, वैसा ये संबंध भी नहीं रहता। पिता कौन, जीव कहाँ से आया है, कहाँ चला जाएगा, ये जीव कहाँ से आया है, कहाँ चला जाएगा, बीच में थोड़ा सा स्वप्न आ गया तो मैं खराब आ गया। सारा संसार का संबंध उतने ही स्वप्नवत है, कोई संबंध पक्का है ही नहीं, स्वप्नवत ही है। क्या प्रत्यक्ष देखता नहीं है? जो कि स्त्री पुत्र आदि के दूसरे लोक में रहने पर भी तो इनके लिए इस संसार में हर्ष शोक करता है, कोई ऐसा काम कर जिससे तुझे अविनाशी तथा उत्तम सुख के देने वाले स्थान की प्राप्ति। कुरु ये न, कुरु मैंने ऐसा तो कर, कुरु ये न जिससे नित्य परमानंद आस्पदम गच्छसि, आस्पदम मेरे स्थान, परमानंद का स्थान में तू चला जाए, ऐसा कोई काम कर। ये जगत के संबंधों के अनित्यता में खराब पड़ा सच्चा मान मान लिया संबंध हो, ये मूर्खता है। कुछ सपनों को ही अच्छा मान, ठीक मानना, सही मानना, यह घटना मत मानने। सपने की सुखड़ी ही भूख नहीं मारती है, बहुत भूखा आदमी नींद आ गई, भूख में कभी नींद आ जाती है। परिणाम तो जागृत अवस्था में खाने का था लेकिन कुछ मिलता नहीं था, दरिद्र था, लेकिन मिष्ठान मिल गया सपने में और तो भरपेट खाया, बहुत खाया, संतुष्ट हो गया गा, इतना भोजन खाया, इतना भोजन कभी मिला नहीं। हो गया करते ही जागृत हो गया, सपने में छुट गया, सब देखा एक कण भी मिला नहीं। ऐसे आत्मा में क्या आया? जब तू खुशी होता है तो आत्मा में अवलोकन कर के आत्मा में क्या आया, अवलोकन कर आत्मा में से क्या गया, जब गया तो आत्मा में से क्या गया और आया तो आत्मा में क्या आया। ज्ञान सामान्य को देखते हुए असमाधान नहीं रहता है, क्योंकि वो तो सामान्य रहता है, ज्ञान विशेष में फिर पर अवश्य दिखता है। लेकिन ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं, जैसा ज्ञान विशेष है अनेक ज्ञान का रूप, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। जैसा ज्ञान सामान्य है वैसा ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। बहुत सुंदर न्याय ज्ञानियों ने दिया है इस पर, जहां तक तुझे तेरे देह पर अपनत्व है कि मैं ऐसा देह वाला हूं, वहां तक तू तो कर, मैं देह वाला हूं आया कहां से, अब इसकी गहराई कि मैं देह वाला हूं वो कहां से आया? आत्मा में ऐसे परिणाम क्यों हुआ? बुरा है ना, जैसे जो जो देह धारण करता है जिस जिस गति में जैसा जैसा देह धारण करता है मैं ऐसा देह वाला हूं ऐसा इसको अनुभव रहता है जो मिथ्या है, वास्तव में ऐसा नहीं है। ज्ञान में निर्धारित समाधान मिला है आत्मा को देह होता है वो ज्ञान देह ही आत्मा होता है। आत्मा है वो ज्ञान देह है, उसको ज्ञान बप्पू कहते हैं शास्त्र बप्पू। लेकिन भ्रांति वश उसने पुंडरिक देह को देह अपना देह मान लिया, वास्तव में तो आत्मा ज्ञान देह वाला है, यानी आत्मा का देह है और समझ नहीं गया विशेष नहीं गया। भूल नहीं करना है ज्ञान विशेष में अपन भूल नहीं करना है।
ज्ञान सामान्य तो वर्तमान में हो सकता
है, हाँ प्रत्येक वर्तमान में होता है, एक भी समय ऐसा नहीं कि जहाँ ज्ञान सामान्य भी नहीं और ज्ञान विशेष भी नहीं, ऐसा कभी नहीं बनता है। क्योंकि जहाँ ज्ञान सामान्य विशेष है वही ज्ञान सामान्य है।
स्वलक्षी ज्ञान जो है ये सामान्य ज्ञान स्वलक्षी ज्ञान जिसको बोलते हैं,
स्वलक्षी ज्ञान परलक्षी ज्ञान होता है उसको भी ज्ञान सामान्य के अस्थि है लेकिन वो चिर होता है। लेकिन ज्ञान सामान्य तो अनादि अनंत है निरंतर है, जो ज्ञान 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 एक ज्ञान सामान्य रहता है वो हमेशा रहता है। प्रत्यक्ष है अकषाय स्वरूप होने से आनंद रूप है, सुख रूप है, अस्थि रूप है, सभी अनंत गुणों का रूप है। उसको अस्तित्व का भी उसको रूप है, सुख का भी उसको रूप है।
उसके विचार में बहुत बड़ी बात, उसके विचार में बहुत बड़ी बात,
उसके विचार में इतनी ताकत है कि कोई कनेक्शन ही नहीं रहता है। जितना संबंध है ज्ञान को गेय के साथ वो ज्ञान विशेष में है, ज्ञान सामान्य में नहीं, काली में तो नहीं। काली जो ध्रुव दृष्टि का विषय है उसमें तो नहीं, लेकिन ज्ञान सामान्य तक भी किसी गेय की पहुंच नहीं है। ज्ञान का संबंध गेय का संबंध ज्ञान विशेष के साथ है, ज्ञान सामान्य के साथ है। उसको इसलिए कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान मैं तो ज्ञान दे वाला इस दे वाला मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान दे रही हूं। ऐसा ज्ञानी को अनुभव होता है, ऐसा ज्ञानी को ज्ञान रहता है, उसमें अपना
शरीर वाला हूँ ऐसा मतलब शरीर वाला हूँ कि शरीर कैसे मिला उसका साइंस?
इसका भाव यहाँ से आया है कि वास्तव में आत्मा को ज्ञान दे है लेकिन इसको भूल गया और इस देह को अपना मान लिया, संसार विस्तृत हो गया। पर ज्ञान देह में अपना तो आने से सारा संसार एक से संसार होता है, एक ज्ञान विशेष और एक ज्ञान सामान्य, सारे समय साथ के संदर्भ में गाथा में ये बात किया ज्ञान विशेष और ज्ञान सामान्य। ज्ञान विशेष में अहम बड़ा कर लिया है, वहां से उसको सभी प्रकार की जो मे के प्रति आसक्ति हुई है, देह आसक्त हुआ है, कहां से हुआ है? देह के प्रति आसक्त क्यों हुआ है और देह के संबंधित जो स्त्री पुत्रा दिए उसके प्रति आसक्ति क्यों हुआ, या खाने पीने की जो चीज विषय है दूसरे जो कि इसके पर आसक्त क्यों हुआ? ज्ञान विशेष में आसक्त हुआ है इसलिए, क्योंकि ये तो सब ज्ञान में प्रतिभा प्रतिबिंबित हुए ज्ञान विशेष में, पर आसक्ति वहां से हुई है। ये तात्विक कहते थे वहां ही ज्ञान सामान्य है, जहाँ ज्ञान विशेष है वहां ज्ञान सामान्य है। एक भूमि में दो ही है, क्षेत्र दो नहीं है, एक ही क्षेत्र है।
नक्की करवा लो अपना ज्ञान अच्छा विशेष, ये ज्ञान विशेष चिंतित करो। इतनी सी सीमा में समेट
वो विचार में ज्ञान विशेष नहीं करता है, लेकिन अनुभव में ज्ञान सामान्य है, तो ये ज्ञान में ज्ञान का ही करता है।